एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे गणितज्ञ और कह सकते हैं दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने सच क्या है इस सदियों पुराने उलझे हुए सवाल को सुलझाने की हिम्मत की, और वो भी गणितीय औजारों से। हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड टार्स्की की।
बिल्कुल, टार्स्की, हाँ, वो शख्स हैं जिन्होंने तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक और सत्य यानी ट्रूथ की हमारी समझ पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सोचिए, दर्शन का एक इतना पेचीदा सवाल सत्य और उसे गणित की कसौटी पर कसना, यही तो टार्स्की का कमाल था। उनका काम तो आज भी देखिए गणित, दर्शन और यहाँ तक कि कंप्यूटर विज्ञान सब जगह फैला हुआ है।
तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो टार्स्की के जीवन की कहानी, उनके समय का माहौल कैसा था, उनके जो क्रांतिकारी विचार थे और उनकी जो स्थायी विरासत है उसको समझने में हमारी मदद करेंगे।
हाँ,
तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि पोलैंड का एक नौजवान कैसे दुनिया के महानतम तर्कशास्त्रियों में गिना जाने लगा, और ये भी कि उनके विचार आज भी इतने मायने क्यों रखते हैं।
और ये कहानी सिर्फ दिमाग की ही नहीं बल्कि दृढ़ता की भी है। मतलब कैसे विश्व युद्ध की उथल पुथल और निजी त्रासदियों के बीच भी उन्होंने, आप सोचिए, ज्ञान की खोज जारी रखी।
सही बात है।
हमारा मकसद यही है कि टास्की के जो मुश्किल लगने वाले काम है ना, उनको एक दिलचस्प अंदाज में समझें, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हों।
तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में, खासकर दो विश्व युद्धों के बीच के पोलैंड से। मैंने सुना कि वो दौर पोलिश गणित और तर्कशास्त्र के लिए एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज जैसा था।
हाँ, वो एक असाधारण समय था। वॉर्सॉ और लवोव, ये शहर तो मतलब गणितीय सोच के गढ़ बन गए थे। इसे लवोव वॉर्सॉ स्कूल ऑफ लॉजिक भी कहते हैं, जैसा आपने बताया।
अच्छा,
उस समय ना गणित की बुनियाद को लेकर बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। खासकर सेट थ्योरी में कुछ पैराडॉक्सेस मतलब विरोधाभास सामने आ गए थे, तो गणित की निश्चितता पर ही सवाल उठने लगे थे।
वाओ,
माहौल ऐसा था कि हर कोई बड़ी बारीकी से लॉजिक और लैंग्वेज यानी तर्क और भाषा पर सोच रहा था।
और इसी माहौल ने टार्स की जैसे दिमागों को तराशा होगा। उनके आसपास भी कर्ट गोडल, बर्टन रसल जैसे बड़े नाम थे,
बिल्कुल,
और पोलैंड में ही स्टैनिस्लाव लेसनिवस्की और यान लुकाशेविश जैसे दिग्गज, जो सुना है टार्स्की के गुरु भी रहे हैं। मतलब एक तरह से दिग्गजों का जमावड़ा था।
सही कहा आपने, विचारों का एक ऐसा संगम जहां गणितीय शक्ति और तार्किक स्पष्टता पर बहुत ज्यादा जोर था। लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध आया और यूरोप का ये जो बौद्धिक केंद्र था वो बिखर गया। टार्स्की जैसे कई विद्वानों को, खासकर जिनकी यहूदी पृष्ठभूमि थी, उनको यूरोप छोड़कर भागना पड़ा, ज्यादातर अमेरिका गए। इससे हुआ ये कि गणित और दर्शन के अनुसंधान का पूरा वैश्विक नक्शा ही बदल गया।
टार्स्की के निजी जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, जैसा पता चलता है। उनका जन्म 1901 में वॉर्सो में अल्फ्रेड टाइटल बॉम के नाम से एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन गणित से पहले उनकी दिलचस्पी तो जीव विज्ञान बायोलॉजी में थी।
हाँ, ये दिलचस्प बात है, पर वॉर्सो विश्वविद्यालय में गणित और तर्कशास्त्र ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। अपने गुरु लेसनिवस्की के अंडर में उन्होंने डॉक्टरेट पूरी की और बहुत जल्द ही पोलिश गणित जगत में उनकी पहचान बन गई।
लेकिन फिर उन्होंने अपना नाम बदला, धर्म भी बदला, टाइटल बॉम्ब से टार्स्की बन गए और कैथोलिक धर्म अपना लिया। क्या ये उस समय के एंटीसेमिटिज्म, यहूदी विरोध से बचने की कोशिश थी?
सूत्र तो यही इशारा करते हैं। देखिए, उस दौर में यूरोप में यहूदी विरोध बढ़ रहा था और अकादमिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ये एक मुश्किल सच्चाई थी। तो नाम बदलना और धर्म परिवर्तन शायद ये पेशेवर बाधाओं को दूर करने का एक तरीका था। एक कहानी तो ये भी है कि टार्स्की नाम उन्होंने बस टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर चुन लिया था। ये उस समय की सामाजिक मजबूरियों को दिखाता है ना?
हाँ, बिल्कुल। और फिर आया 1939 का वो निर्णायक मोड़। टास्के हार्वर्ड में लेक्चर देने अमेरिका गए हुए थे और पीछे पोलैंड में उनका परिवार था। तभी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया।
सोचिए जरा, वो अमेरिका में फंस गए और उनका परिवार पीछे युद्ध की विभीषिका में। बाद में उनके माता पिता और भाई वो होलोकॉस्ट का शिकार हुए। ये उनके लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत सदमा था।
ओह, ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, उनका परिवार मतलब पत्नी और बच्चे वो युद्ध खत्म होने के बाद ही अमेरिका आ पाए।
इस भयानक त्रासदी के बावजूद उन्होंने अमेरिका में अपना अकादमिक जीवन फिर से खड़ा किया। पहले हार्वर्ड और न्यूयॉर्क में कुछ समय काम किया, फिर 1942 से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली चले गए, जो फिर उनका घर ही बन गया।
और बर्कली में तो उन्होंने समझिए इतिहास रच दिया। वहां उन्होंने गणितीय तर्कशास्त्र का दुनिया का एक बेहतरीन केंद्र स्थापित किया, जिसे बर्कली स्कूल ऑफ लॉजिक कहा जाता है।
अच्छा,
उन्होंने अनगिनत छात्रों को पढ़ाया जो खुद आगे चलकर बड़े तर्कशास्त्री बने। उन्हें अरस्तु, फ्रेगे और गोडल के साथ इतिहास के चार महानतम तर्कशास्त्रियों में से एक माना जाता है। ये उनकी मेधा और लगन का सबूत है।
अब आते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध काम पर, सत्य की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ। सुनने में ये एकदम दार्शनिक सा लगता है ना, लेकिन टार्स्की ने इसे गणित का जामा पहना दिया। मतलब सदियों से दार्शनिक सच क्या है इस पर बहस कर रहे थे, पर टार्स्की ने पूछा, क्या हम सच की एक ऐसी परिभाषा बना सकते हैं जो गणित जितनी सटीक हो?
हाँ, यही उनका क्रांतिकारी कदम था। उनका 1933 का एक लेख है, औपचारिक भाषाओं में सत्य की अवधारणा, वो एक मील का पत्थर है। इसमें उन्होंने अपनी सत्य की सिमेंटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ पेश की।
सिमेंटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ,
हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य था सत्य के लिए एक ऐसी गणितीय परिभाषा देना जो विरोधाभासों से मुक्त हो, खासकर वो लायर्स पैराडॉक्स जैसे विरोधाभासों से।
हाँ, ये लायर्स पैराडॉक्स तो बड़ा मशहूर है। ये वाक्य झूठा है, अगर ये वाक्य सच्चा है तो इसका मतलब है कि ये झूठा है, और अगर ये झूठा है तो इसका मतलब है कि ये सच्चा है। अरे, ये तो दिमाग घुमा देता है। टार्स्की ने इसे कैसे सुलझाया?
देखो, टार्स्की का सबसे बड़ा आइडिया था भाषा के स्तरों, मतलब लेवल्स ऑफ लैंग्वेज में फर्क करना।
अच्छा, लेवल्स।
हाँ, उन्होंने कहा एक होती है ऑब्जेक्ट भाषा, वो भाषा जिसके वाक्यों के बारे में हम सच या झूठ जानना चाहते हैं, जैसे मान लो गणित की कोई भाषा, और दूसरी होती है मेटा लैंग्वेज, वो भाषा जिसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट भाषा के बारे में बात करने के लिए करते हैं, जैसे हिंदी या अंग्रेजी जिसमें हम गणित पर चर्चा कर रहे हैं। टार्स्की ने दिखाया कि आप ऑब्जेक्ट भाषा के लिए सत्य की परिभाषा मेटा लैंग्वेज में दे सकते हैं, बशर्ते मेटा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट भाषा से ज्यादा समृद्ध या कह लो शक्तिशाली हो। यानी आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो उस भाषा के बारे में बात करने से ज्यादा सक्षम होनी चाहिए।
अच्छा, मतलब सत्य की परिभाषा उसी भाषा में नहीं दी जा सकती जिसके वाक्य का सत्य हम परख रहे हैं। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे आप अपनी आंख से अपनी ही आंख पुसीदे नहीं देख सकते, आपको शीशे यानी एक मेटा लैंग्वेज की जरूरत होती है।
अरे वाह, क्या बढ़िया उपमा दी है, बिल्कुल ऐसा ही। इसी विचार से लायर्स पैराडॉक्स हल हो जाता है, क्योंकि वाक्य, ये वाक्य झूठा है, अपनी ही सच्चाई पर टिप्पणी कर रहा है जो टार्स्की के अनुसार अवैध है। सत्य की परिभाषा हमेशा एक उच्च स्तरीय भाषा में होनी चाहिए।
और उनकी वो प्रसिद्ध कन्वेंशन टी, वो क्या चीज है?
कन्वेंशन, हाँ, वो टार्स्की की थ्योरी का निचोड़ है कह सकते हैं। ये एक शर्त है जो सत्य की किसी भी अच्छी परिभाषा को पूरी करनी चाहिए। ये बस ये कहती है, वाक्य एक्स सत्य है यदि और केवल यदि एक्स।
जैसे वो क्लासिक उदाहरण, वाक्य बर्फ सफेद है, सत्य है यदि और केवल यदि बर्फ सफेद है। सुनने में तो ये बिल्कुल सीधी साधी कॉमन सेंस वाली बात लगती है, इसमें गहराई क्या है?
देखो, ये दिखने में सीधा है पर है बहुत गहरा। आप सही कह रही हैं कि ये सामान्य ज्ञान जैसा लगता है, लेकिन टार्स्की ने इसे गणितीय रूप दिया। सोचिए, ये वाक्य कर क्या रहा है? ये एक भाषाई चीज, बर्फ सफेद है जो कोटेशन मार्क्स में है, को दुनिया की एक वास्तविक स्थिति, बर्फ का सचमुच सफेद होना से जोड़ रहा है।
अच्छा, हाँ।
टार्स्की ने दिखाया कि कैसे इस सहज लगने वाले विचार को औपचारिक भाषाओं के लिए गणितीय रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने सत्य को संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन की एक ज्यादा तकनीकी और गणितीय अवधारणा में बदला। जैसे बीजगणित में कोई मान किसी समीकरण को संतुष्ट करता है ना,
हाँ हाँ,
वैसे ही दुनिया की चीजें भाषा के वाक्यों को संतुष्ट करती हैं।
अच्छा, तो ये एक तरह से कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य वो है जो वास्तविकता से मेल खाता है, उसको एक ठोस गणितीय आधार देना हुआ। इसने दर्शन और तर्कशास्त्र को कैसे बदला फिर?
इसने तो क्रांति ला दी। सच में इसने दिखाया कि सत्य जैसे दार्शनिक मुद्दे पर भी गणितीय स्पष्टता लाई जा सकती है, और इसी काम ने आधुनिक मॉडल थ्योरी की नींव रखी।
मॉडल थ्योरी,
हाँ, मॉडल थ्योरी गणित की वो शाखा है जो औपचारिक भाषाओं जैसे गणित के सूत्र और उनकी व्याख्याओं यानी मॉडल्स जैसे वास्तविक संख्याएं या ज्यामिति आकृतियां की बीच के रिश्ते का अध्ययन करती है। सोचिए, जैसे एक नक्शा जो औपचारिक भाषा है और असल शहर जो मॉडल है। मॉडल थ्योरी इन दोनों के बीच के सटीक रिश्ते को समझने का गणितीय तरीका है और टार्स्की इसके संस्थापकों में से थे।
इसके अलावा भी उनके कुछ महत्वपूर्ण काम रहे होंगे यकीनन।
हाँ, कई हैं। जैसे 1936 में उन्होंने तार्किक परिणाम यानी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस की अवधारणा को परिभाषित किया, यानी कब कहा जा सकता है कि एक कथन दूसरे कथनों का तार्किक नतीजा है। उनकी दी गई परिभाषा आज भी स्टैंडर्ड मानी जाती है।
अच्छा।
फिर 1948 में उनका एक और महत्वपूर्ण काम आया, प्राथमिक बीजगणित और ज्यामिति के लिए एक निर्णय विधि, अ डिसीजन मेथड फॉर एलिमेंट्री एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री।
निर्णय विधि मतलब ये तय करने का तरीका कि कोई गणितीय कथन सही है या गलत।
बिल्कुल, उन्होंने साबित किया कि एक एल्गोरिदम मतलब एक तय प्रक्रिया मौजूद है जो प्राथमिक बीजगणित यानी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और ज्यामिति के किसी भी कथन की सच्चाई या झूठ का फैसला कर सकती है। ये कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी।
अरे वाह।
इसने दिखाया कि कम से कम कुछ गणितीय सवालों के जवाब मशीनी तरीके से दिए जा सकते हैं। ये ऑटोमेटेड रीजनिंग यानी स्वचालित तर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
यानी ये टास्की का मुख्य योगदान यही था कि उन्होंने दर्शन के सवालों को गणित की दुनिया में लाकर उनकी सटीक परिभाषाएं दी और उन्हें हल करने के औजार बनाए।
एकदम सही का। सत्य की परिभाषा, मॉडल थ्योरी की नींव, तार्किक परिणाम की समझ और निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसाइडेबिलिटी,
ठीक है,
इन सब पर उनके काम ने आधुनिक तर्कशास्त्र का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि दार्शनिक अटकलों की जगह गणितीय कठोरता से कैसे गहरे सवालों को समझा जा सकता है।
अगर उनकी तुलना रसेल या गोडेल जैसे उनके समकालीनों से करें तो टार्स्की का रास्ता कितना अलग था।
देखिए, जहां रसेल एक आदर्श तार्किक भाषा बनाने पर जोर दे रहे थे, वहीं टास्की मौजूदा औपचारिक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए व्यवहारिक गणितीय तकनीकें विकसित करने में लगे थे। गोडेल ने अपने प्रसिद्ध अपूर्णता प्रमेयों से दिखाया कि गणितीय प्रणालियों की सीमाएं क्या हैं, मतलब क्या हासिल नहीं किया जा सकता। टास्की का काम इसका पूरक था, कॉम्प्लीमेंट्री था। उन्होंने दिखाया कि सही गणितीय ढांचे के भीतर क्या हासिल किया जा सकता है, जैसे सत्य की एक सुसंगत परिभाषा देना।
अच्छा।
उनका जोर दार्शनिक अटकलों पर कम, गणितीय निर्माण पर ज्यादा था।
और उनकी ये विरासत आज हमें कहाँ कहाँ दिखती है।
अरे हर जगह। उनकी सत्य की सिमेंटिक थ्योरी आज भी गणितीय तर्कशास्त्र और दर्शन में मानक है। मॉडल थ्योरी तो गणित, कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में एक बुनियादी उपकरण बन चुकी है।
कंप्यूटर साइंस में भी
कैसे?
हाँ,
जैसे डेटाबेस थ्योरी से लेकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती हैं, इन सब में टास्की के विचारों का प्रभाव है। भाषा विज्ञान में भी अर्थ का जो औपचारिक अध्ययन होता है, फॉर्मल सिमेंटिक्स, वो सीधे तौर पर टास्की के काम पर आधारित है।
उनकी कुछ मशहूर कथन भी याद आते हैं, एक तो वही बर्फ सफेदे वाला उदाहरण।
हाँ, वो उनकी कन्वेंशन टी का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक और कथन है जो उनकी सोच को दर्शाता है, तर्कशास्त्र सबसे ऊपर सही होना चाहिए, लॉजिक मस्ट बी करेक्ट अबव ऑल। ये दिखाता है कि उनके लिए गणितीय सटीकता कितनी महत्वपूर्ण थी, शायद दार्शनिक व्याख्याओं से भी ज्यादा।
एक और दिलचस्प कथन है जो उनके छात्र बताते थे, किसी ने कभी विरोधाभास नहीं देखा है, नो वन हैज एवर सीन अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? क्या दुनिया में विरोधाभास नहीं होते?
इसका मतलब ये है टार्स्की के अनुसार कि विरोधाभास दुनिया की चीज नहीं है, बल्कि हमारी भाषा या हमारी तार्किक प्रणालियों की खामी है। दुनिया तो बस जैसी है वैसी है, ये हमारे विवरण हैं, हमारी बातें हैं जो आपस में टकरा सकती हैं, असंगत हो सकती हैं। दुनिया में आपको कभी +1 और -1 एक साथ टकराते हुए नहीं दिखेंगे, ये तो गणितीय या तार्किक प्रणाली की बात है।
ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। क्या उनके काम की आलोचनाएं भी हुई?
कंप्यूटर जैसी स्ट्रक्चर्ड भाषाओं पर ही लागू होती है। ये हमारी रोजमर्रा की जो प्राकृतिक भाषाएं हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उनमें सत्य के जो जटिल अर्थ होते हैं उन्हें पूरी तरह नहीं पकड़ पाते।
हाँ, ये तो लगता है।
टार्स्की खुद भी मानते थे कि प्राकृतिक भाषाएं बहुत, कह लीजिए, गड़बड़ और लचीली होती हैं, उन पर ये गणितीय विधि लगाना मुश्किल है।
ये तो एक बड़ी सीमा लगती है, हमारी ज्यादातर बातचीत तो प्राकृतिक भाषा में ही होती है।
सही बात है, और इस पर काफी बहस हुई है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि टार्स्की का सिद्धांत तकनीकी रूप से तो ठीक है, पर दार्शनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं कि ये सत्य के गहरे मतलब यानी दुनिया से उसके जुड़ाव को पूरी तरह नहीं समझाता। एक और दिलचस्प विवाद बानाक टार्स्की पैराडॉक्स से जुड़ा है, जो टार्स्की ने स्टीफन बानाक के साथ मिलकर दिया था।
हाँ, ये तो सुना है, बड़ा अजीब है कि एक गेंद को काट छांट कर फिर से जोड़ने पर उसी आकार की दो गेंदें बन सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है भला?
हाँ, ये गणितीय रूप से सिद्ध है, लेकिन हमारे सहज ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये सेट थ्योरी के कुछ मान्यताओं एक्सियम्स पर आधारित है, और इसने उन मान्यताओं की प्रकृति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये दिखाता है कि गणित कभी कभी कितना प्रतिसहज, कितना काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है।
चलिए अब कुछ हल्के फुल्के किस्सों की बात करें। सुना है टार्स्की बतौर शिक्षक बहुत सख्त थे, उन्हें तर्कशास्त्र का नेपोलियन भी कहा जाता था।
हाँ, ये मशहूर है उनके बारे में। वे अपने छात्रों से बहुत ऊंचे मानकों की उम्मीद रखते थे और बेहद परफेक्शनिस्ट थे, मतलब पूर्णतावादी। कहते हैं उनके सेमिनार घंटों चलते थे बिना ब्रेक के, और वे छात्रों पर सवालों की बौछार कर देते थे। लेकिन शायद इसी सख्ती ने कई बेहतरीन तर्कशास्त्री तैयार किए। उनका व्यक्तित्व भी काफी रोबदार था, ऊंचा कद, दमदार उपस्थिति और वो गहरा पोलिश लहजा।
ये भी दिलचस्प है कि इतने अमूर्त, इतने एब्स्ट्रैक्ट विषयों पर काम करने के बावजूद वे काफी व्यवहारिक भी थे, जैसे युद्ध के दौरान सैन्य अनुसंधान में उनका योगदान।
और ये कि वे युवावस्था में एक एथलीट थे।
हाँ, पोल वॉल्टिंग करते थे
और जीवन भर शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखा। शायद वही अनुशासन उनके काम में भी झलकता था।
तो कुल मिलाकर एल्फ्रेड टार्स्की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दर्शन की धुंधली गलियों में गणित की रोशनी जलाई, ऐसा कह सकते हैं।
बिल्कुल, उन्होंने दिखाया कि सत्य जैसे गहरे दार्शनिक सवाल को भी तर्क और गणित की भाषा में पकड़ा जा सकता है। उनकी सिमेंटिक थ्योरी ने न सिर्फ पुराने विरोधाभासों को हल किया, बल्कि मॉडल थ्योरी जैसे नए गणितीय क्षेत्र की नींव भी रखी। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, बल्कि ये सोचने का एक नया तरीका था।
और उनका असर सिर्फ अकादमिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कंप्यूटर विज्ञान से लेकर भाषा विज्ञान तक फैला हुआ है। जैसे एक कंप्यूटर कैसे भाषा को समझते हैं, इसकी नींव में कहीं ना कहीं टार्स्की का काम जुड़ा हुआ है।
और उनकी जीवन यात्रा भी कम प्रेरणादायक नहीं है। जैसा हमने बात की, पोलैंड के सुनहरे दौर से लेकर युद्ध की तबाही और फिर अमेरिका में एक नए सिरे से शुरुआत कर तर्कशास्त्र की दुनिया को दिशा देना, ये विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान की अथक खोज की एक मिसाल है।
तो एल्फ्रेड टार्स्की सिर्फ एक गणितज्ञ या तर्कशास्त्री नहीं थे, बल्कि वे एक तरह के पुल निर्माता थे जिन्होंने दर्शन और गणित के बीच, भाषा और दुनिया के बीच एक मजबूत तार्किक पुल बनाया।
सही कहा आपने, उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे औपचारिक तर्क की स्पष्टता से हम दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। उनका जीवन और काम हमें याद दिलाता है कि बुनियादी सवालों को कठोरता से पूछना कितना जरूरी है।
उनकी विरासत हमें सोचने पे मजबूर करती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, टार्स्की ने औपचारिक भाषाओं के लिए सत्य को परिभाषित करने में जो सफलता पाई, क्या वो हमें हमारी रोजमर्रा की प्राकृतिक भाषा में सत्य की जटिलताओं के बारे में कुछ सिखा सकती है? या फिर ये गणितीय सटीकता की सीमा दिखाती है कि शायद कुछ मानवीय अवधारणाएं ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह औपचारिक खांचों में नहीं बांधा जा सकता? इस पर सोचना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।